फिर इसके बाद जो है वो नूह अलैहिस्सलाम आयत नंबर 21 से लेकर 24 तक क्या करते हैं, अब इसमें जो है वो अल्लाह ताला के सामने अपनी गुजारिश पेश करते हैं। गुजारिश बड़ी दर्दनाक है, अपनी वो कहानी सुनाते हैं जो एक लंबी उनकी जो है वो रुदाद है, जो दावा की एक लंबी हिस्ट्री है। कहते हैं قال نوح نوح علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انہم اسونی انہوں نے تو میری نافرمانی کی انہوں نے تو میری اطاعت نہیں کی۔ اب آپ دیکھیں کہ اب جو ہے کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اے میرے رب میری قوم جو ہے انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ اسونی معصیت، معصیت کے معنی کیا ہوتے ہیں جو ہے وہ، یہ عصیان یعنی گناہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے معنی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک راستے پہ اس کو چلنا چاہیے تو اس راستے پر چلنے کی بجائے جو ہے وہ گناہوں کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لے۔ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے، اور دوسری طرف یہ بات بھی پیش کی جاتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی پھر نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے یہ کہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو اصل بات کیا ہے کہ پیغمبر تو اس لیے آئے تھے کہ ان کی اطاعت ہوتی، لیکن افسوس کے قوم کے لوگ جو تھے انہوں نے اطاعت کرنے کی بجائے پیغمبر کی نافرمانی جو تھی اسی پر وہ راضی ہو گئے۔ دوسری بات کیا کی بتائی انہوں نے، رپورٹ جو پیش کی کہ وَتَّبَعُوا، انہوں نے اتباع کیا، من لم یزدہ، اس کا لم یزدہ کہ نہیں اضافہ کیا ان میں، انہوں نے پیروی کی ایسوں کی، لم یزدہ نہیں بڑھایا اس کو مالہ، مال اس کے نے، وولدہ اور اولاد نے، الا خسارہ سوائے نقصان کے۔ تو انہوں نے ایسے رئیسوں امیروں کی پیروی کی اپنی قوم میں سے جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نافرمان ہو گئے تھے، اور زیادہ نامراد ہو گئے تھے۔ تو مال اور اولاد میں تو بہت اچھے تھے، تو مال اور اولاد کی کثرت نے ان کو خسارے میں مبتلا کر دیا تھا، الا خسارہ، ان کی کوئی خوبی نہیں تھی۔ ایک خوبی کیا تھی؟ مال اور اولاد کی کثرت، اور مال اور اولاد کی بہتات نے ان کو جو ہے کیا کیا، الا خسارہ، خسران، نقصان میں، گھاٹے میں جو تھا مبتلا کر دیا تھا۔ تو افسوس ان لوگوں نے کیا کیا کہ میری اطاعت کرنے کی بجائے جو ہے وہ قوم کے امیر اور سردار اور نافرمان جو تھے، مترفین کہہ لیں، مترفین کا لفظ آپ پڑھ چکی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مترفین کی جو ہے وہ اطاعت کی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور پھر ان سرداروں کی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اور خوبی کیا تھی، وَمَكَرُوا، اور بلکہ صرف کہتے ہیں کہ سرداروں کی نہیں، بلکہ جو ہے سردار یہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں جو قوم کے لوگ ہیں، عوام۔ تو قوم کے سرداروں نے چونکہ عوام کو بہکایا تھا تو قوم کے سرداروں نے کیا کیا تھا، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے پھیلایا، انہوں نے چال چلی، مکرن چال، کبارہ، بہت بڑی۔ تو یہ جو مکر کا لفظ ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھا ہے، مکر اچھا ہے، اگر برے مقصد کے لیے ہو تو ناجائز، لیکن یہ اکثر برے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور چار لفظ ہیں جو تدبیر یا مکر کے لیے قرآن میں آئے ہیں اور اس کا تیسرا درجہ ہے۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ مکر کا بہت بڑا جال پھیلا رکھا تھا، کیونکہ کبارہ کا لفظ آیا ہے۔ کبارہ جو ہے، کبار مبالغہ ہے کبیر کا، کبیر کا مبالغہ ہے، اور استکبار کے ساتھ ساتھ یہ جو یہ مترفین تھے، امیر لوگ تھے، انہوں نے عوام کو بہکانے کے لیے بڑی بڑی چالیں چلی۔ اور اچھا چال کیوں چلی جاتی ہے؟ ٹرک، پبلک کو سمجھ میں نہ آئے بات، تو پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ایسی چالیں چلی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب فیل फेल जिस लफ्ज का फेल आए फिर वही लफ्ज दोबारा आए तो ये ताकीद दर ताकीद के मानी होते हैं। और वह मकर मकरन फिर आगे कुबारा मजीद उसकी शिद्दत है और ताकीद है कि लोगों ने बड़ा मकर का जाल जो है वो फैला रखा था। और आप पढ़ चुकी हैं पिछली सूरतों में जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी बताई गई है, मसलन क्या मकर उन्होंने किए, सूरत आराफ में आपने पढ़ा आयत 63 में कि ये तो तुम ही जैसा एक इंसान है, सबसे बड़ा एक चाल चली कि ये फिर फरिश्ता क्यों नहीं। फिर सूरत हूद की आयत 27 में भी यही बात कि ये एक इंसान ही है तुम्हारा जैसा। फिर इसके बाद सूरत हूद की आयत 27 में एक और उनकी चाल क्या थी कि इनके पीछे तो तुम्हारी कौम में से जो अराजिल है ना वो चल पड़े हैं, जलील किस्म के लोग, गरीब लोग। फिर उन्होंने सूरत मोमिनून की आयत 24 में जो चाल हमें पता चलती है क्या चली, अगर अल्लाह को भेजना ही होता ना कोई पैगंबर तो अल्लाह फरिश्ता भेजता। फिर इसी तरह उन्होंने सूरत हूद की आयत 31 में अल्लाह बताते हैं कि क्या चाल चली कि इसके पास फिर गैब के खजाने होने चाहिए थे, या फिर इसके पास इल्म गैब होता, या ये अमीर होते, या फिर फरिश्तों की तरह ये इंसानी हाजतों से बेनियाज होते। फिर इसी तरह एक और चाल उनकी तो ये थी कि इनमें कोई करामत नहीं नजर आती। सूरत मोमिनून आयत 24 में ये शख्स दरअसल तुम पर अपनी सरदारी चाहता है। मोमिनून आयत 25, इस शख्स पर किसी जिन का साया है जिसने इसे दीवाना बना दिया है। और ऐसी बातें कुरैश के लोग भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहा करते थे। तो अब ये सारी कहानी वो सुना रहे हैं और कालू और कहा उन्होंने ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, हरगिज ना छोड़ना अपने माबूदों को। वज़रा जो है ये फाले नाकिसा में से है, वज़रा किसका रूट है, ये तज़रुन्ना का रूट है, वज़ाल रा, और इसका मतलब होता है छोड़ देना, और कैसे किसी को हकीर समझ कर छोड़ना। और फाले नाकिसा में से है, सिर्फ मजारे और अमर पर इस्तेमाल होता है, माजी में ये नहीं आता। ला तज़रुन्ना, तुम हरगिज ना छोड़ना, आलिहतकुम, इलाह की जमा है आलिहा, अपने माबूदों को, वला तज़रुन्ना, और हरगिज ना छोड़ना, वदन वद को, वला सुआन और ना सवा को, और वला यहूसा और ना यहूस को, वा यहूका और यहू को, व नसरन और नसर को। तो अब जो है क्या बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हरगिज ना अपने माबूदों को छोड़ना और ना इन चार को खास तौर पे, वद सुआ यहूस और यहूक और नसर को, है ना, बल्कि चार की बजाय कितने हैं नाम, पांच नाम है, वद सुआ यहूस यहूक और नसर, तो पांच लोगों का नाम लेकर कहा कि इनको तो हरगिज भी ना छोड़ना। अच्छा, इसमें जो है जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो है वो इस बात से क्या बात पता चलती है कि वो बुतों की पूजा करती थी, क्योंकि कौम के सरदारों ने क्या कहा कि बुतों को नहीं छोड़ना। दूसरी बात ये पता चलती है कि पांच का उन्होंने खास तौर पे नाम लिया कि इन पांच को जो है ना बिल्कुल भी ना छोड़ना। और इस आयत की तफसीर में आप इस हदीस जो है उसको समझ सकती हैं, जिसे जो है ये बुखारी की रवायत है, और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जो बुत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में पूजे जाते थे वही बाद में अरब में आ गए। वो कलब कबीले का बुत था जो दोमतुल जंदल में था, वद या बुद, सुआ हुजैल कबीले का बुत था, यहूस पहले मुरार कबीले का बुत था फिर बनी गुतैफ का, गुतैफ, और ये सबा शहर के पास जौफ में था, यहूक हमदान कबीले का था, और नसर हिमियर कबीले का जो जिलकला बादशाह की औलाद थे, ये भी कौम सबा से इनका ताल्लुक। ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से चंद नेक लोगों के नाम थे, जब वो मर गए तो शैतान ने उन्हें ये पट्टी पढ़ाई कि जहां ये लोग बैठा करते थे वहां इनके मुजस्मे बना कर नसब कर दो और उनके वही नाम रखो जो इन बुजुर्गों के थे। उस वक्त उनकी इबादत नहीं की जाती थी, लेकिन जब लोग गुजर गए तो बाद वालों को ये शऊर ना रहा, फिर वो उसकी परस्तिश करने लगे। तो आप देख लीजिए कि इससे फिर क्या बात हमारे सामने आती है कि उनके अंदर बुत परस्ती का रवाज कैसे पैदा हुआ। इस सिलसिले में जो है वो ये बात भी आप याद रखें कि किसी भी जैसे मुजस्मों की पूजा ऐसे नहीं हो जाती या तस्वीरों की पूजा ऐसे नहीं हो जाती। लोग कहते हैं ना कि तस्वीरें इस्लाम में क्यों हराम कर दी गई। अब आप देखें कि इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में मोहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह से रवायत की, उन्होंने फरमाया कि ये हजरात आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान के जमाने के औलिया कराम थे। कौन से? ये जो पांच हैं, इनके कुछ पैरोकार भी थे जो इनके तरीके पर चलते थे। जब ये फौत हो गए तो इनके अकीदतमंद पैरोकारों ने कहा अगर हम इनकी तस्वीरें बना लें तो इनकी याद की वजह से हमें इबादत का शौक ज्यादा होगा, क्योंकि ये इतने नेक थे तो इनकी तस्वीरों को देखकर फिर हमें इबादत का शौक पैदा होगा। चुनाचे उन्होंने इनकी तस्वीरें बनाई। जब ये तस्वीरें बनाने वाले लोग मर गए, अब इनकी जगह दूसरी कौम आ गई, दूसरे लोग आ गए, तो इबलीस ने इनके दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे बाप दादा इन औलियाए अकराम की इबादत किया करते थे और इन्हीं की वजह से उन्हें बारिश मिलती थी। चुनाचे इन लोगों ने इनकी इबादत करनी शुरू कर दी। फिर इसी तरह जो है क्या बात पता चलती है कि अबुल मुतहर से रवायत है कि अबू जाफिर मोहम्मद बाकिर नमाज पढ़ रहे थे कि हाजरीन ने यजीद बिन मोहलिब का जिक्र किया। नमाज से फारिग होकर उन्होंने कहा तुमने यजीद बिन मोहलिब का जिक्र किया है, वो इस इलाके में कत्ल हुए हैं जहां सबसे पहले गैर अल्लाह की पूजा होती थी। उन्होंने वध के बारे में फरमाया। वध क्या है अभी जिसका हम पढ़ रहे हैं? वध उन्होंने कहा कि वो एक नेक आदमी था जो कौम में हर दिल अजीजात था। वो एक नेक आदमी था जो कौम में हर दिल अजीज था, बहुत पसंद किया जाता था। जब वो फौत हो गया तो लोग बाबिल में इसकी कब्र पर बैठ गए और बहुत ज्यादा गमगीन हुए। जब इबलीस ने इनका गम देखा तो इंसानी सूरत में इनके पास आकर कहने लगा मैं देख रहा हूं कि तुम इन साहिब की वफात पर बहुत दिल गिरफ्ता हो। साहिब कौन? वध। तो क्या मैं तुम्हें उस जैसी एक सूरत ना बना दूं जो उसकी जगह रखी जाए और वो इसकी यादगार बन जाए? उन्होंने कहा हाँ बना दो। उसने वध का एक बुत बना दिया, उन्होंने उसे चौपाल में रख लिया और उसे याद करने लगे और उसकी बातें करने लगे। जब इबलीस ने देखा कि लोग वध को बहुत याद करते हैं तो कहा क्या मैं तुम में से हर शख्स के घर में इसी तरह का एक मुजस्मा ना बना दूं जिसे देखकर वो उसे याद करें, यानी चौपाल में ना आना पड़े? उन्होंने कहा हाँ बना दो। इसने हर शख्स के घर में एक बुत बना दिया, वो इसको देखकर इस अल्लाह के वली वध को याद करते थे। जब इनके बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को इन बुतों को अहमियत देते देखा तो वो भी इसी तरह अहमियत देने लगे, हत्ता कि अगली नस्लों के लोग इस बात से बेखबर हो गए कि इनके बुजुर्ग उन्हें क्यों याद करते थे। अलबत्ता उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनकी इबादत शुरू कर दी। चुनाचे सबसे पहले जिस मखलूक की इबादत की गई वो वध बुजुर्ग का बुत था। ये तफसीर इब्ने अबी हातिम से रवायत ली गई है। अच्छा, इससे क्या बात पता चलती है कि हर बुत को पूजने वाली एक अलग जमात थी और शुरू में जो है वो क्या हुआ कि वो नेक लोग थे, जब वो मर गए तो उसकी जैसे तस्वीरें फिर मुजस्मे बनाए गए। जब तवील यानी पहले तस्वीरें, तवील जमाना गुजरा तो तस्वीरों की जगह मुजस्मों ने ले ली, स्टैचूज ने, फिर और जमाना गुजरा तो फिर वो बुत बना लिए गए और फिर जो है उनको उनकी इबादत की जाने लगी। हजरत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हुमा ने हबशा में जो गिरजा देखा था इसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। इसका नाम मारिया था। उन्होंने इसकी खूबसूरती का जिक्र किया और इसमें जो तस्वीरें थी इनका जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन लोगों में जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता था तो इसकी कब्र पर मस्जिद तामीर करते थे, इबादतगाह, और इसमें ये तस्वीरें बनाते थे। अल्लाह के यहाँ ये लोग मखलूकात में बदतरीन हैं। ये सही बुखारी की रवायत है। आज मुसलमान क्या करते हैं? कब्रों पर मस्जिदें बनाते हैं, मिजार, और फिर जो है वो क्या करते हैं कि तस्वीरें, यादगार, मुजस्मे, ये सारी बातें। तो बहरहाल अब ये निचोड़ के तौर पर फिर हमारे सामने क्या बात आई कि असल में ये थे नेक लोग तो जिनकी पूजा करते थे। वक़द अदल्लू कसीरा, और तहकीक गुमराह किया उन्होंने बहुत से लोगों को, तो एक को गुमराह नहीं किया, उन्होंने जो है वो बहुत से लोगों को गुमराह किया। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि अदल्लू का फाइल कौमे नूह के रऊस है, रईस जो अमीर लोग थे ना वो हैं, कि उन्होंने बहुत से लोगों को जो है वो गुमराह किया। ये है एक राय तो ये है। अच्छा दूसरी राय क्या है कि इससे मुराद ये पांच बुत हैं, कि पांच ये बुत जिनका जिक्र किया गया है, वद सुआ यगूस यऊक नस्र, इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया कि ये इन पांच जो लोगों की तस्वीरें बनाई गई और जो थे जिन पर मजार से बनाए गए और मस्जिदें बनाई गई, तो इसकी वजह से बहुत लोग गुमराही में चले गए। सूरत इब्राहिम आयत 36 में भी आप पढ़ चुकी, रब्बे इन्ना हुन्ना अदललना कसीरम मिनन्नास। अब आप देखें कि आप जरा अपने इंडिया पाकिस्तान पर एक नजर डालें और शेख अली हजवेरी, दाता गंज बख्श और जो है वो मुश्किल कुशा कहा जाता है, बहुत से जो ने सारी जिंदगी लोगों पे वो नेक लोग जो अल्लाह के वली थे और सारी जिंदगी तौहीद की दावत देते रहे सारी जिंदगी, अब उन्हीं के मरने पर लोगों ने कब्रों पर मस्जिदें बना ली और मजार, और अब कवाली और भंगड़ा और नाच और बुराई के अड्डे अब वो बनने लगे, अब वो वहीं पर शिर्क होता है। अब उनका तो कोई कसूर नहीं, वो तो नेक ही थे। अगर लोगों को कहा जाता है कि भाई ये सब चीजें इस्लाम में नहीं है, तो लोग कहते हैं ये बुजुर्गों को मानते नहीं है, नहीं जी ये तो उसका खत्म नहीं देने देते, ये तो देगे नहीं चढ़ाने देते और वहां पे जाने से मना करते हैं। भाई बुजुर्गों के अगर कोई भी फौत हो गया है वहां पे जाकर उनकी मगफरत के लिए दुआ करना, इससे कोई मना नहीं करता, लेकिन वहां जाके सजदे करना, वहां जाके ये समझना कि यहां आकर हम जो देख चढ़ाएंगे तो यहां जो है ये ज्यादा अल्लाह के यहां कबूल होगी, नजरों न्याज चढ़ाना, अंसाब आप पढ़ चुकी ना, और वहां जाके उनकी करामात के बारे में या घर बैठे भी अजीबो गरीब यकीन रखना, उनको समझना वो मुश्किल कुशा है, उनको तो छोड़ें। अगर कोई हजरत अली को भी कहेगा कि अली मुश्किल कुशा, तो ये भी शिर्क है। और अगर किसी नेक इंसान को कोई कहेगा जैसे कि वो मुश्किल कुशा है, किसको कहा जाता है, गौसे आजम कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा सुनते हैं दाता गंज बख्श को या शेख अली अजवेरी को या जो भी बुजुर्ग गुजरे हैं, तो आप सोच लें कि उनकी नेकी को तस्लीम करने से इनकार नहीं है, यकीनन वो बहुत नेक थे, बहुत काम किया है इन लोगों ने, उसी की वजह से दीन जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान में इतना फैला है, इतनी किताबें और इतने अच्छे अच्छे नेक लोग पैदा हुए। उन्होंने खतूत लिखे उस जमाने के बादशाहों को जबकि लोग डरते थे, उन्होंने मुलाकातें की हैं, वो हक की नंगी तलवार बन गए, वो चट्टान बन गए, वो पहाड़ बन गए, वो पहाड़ी के चिराग बन गए जो तूफानों में जलते हैं, और दीन को उन्होंने बचाया। लेकिन जब वो चले गए, अब देखेंगे इबलीस ने कैसे कैसे बदलाए, हर दौर में ऐसा होता रहा, इसीलिए फिर ऐसे लोग अल्लाह पैदा करता रहा हर दौर में, जो कि उस जमाने की बुराइयां शिर्क बिदतें रस्में जो हैं उनका तोड़ करते हैं, जिसमें जो है वो अब्दुल वहाब है और बहुत से नेक लोग हैं, इमाम तैमिया है, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हैं, या फिर जो है ये जिन्होंने मारफुल कुरान लिखी है मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, या फिर तदब्बुर कुरान जिन्होंने लिखी है, तो बहुत नेक लोग गुजरे हैं, बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए हैं। तो इससे क्या बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती है कि इब्तदा में वो नहीं होता जो कि शुरू होती है बात, लेकिन फिर आखिर में ऐसा होने लग जाता है, बाद में लोग उसको तब्दील कर लेते हैं। तो हम सबको भी जरा आंखें खोल कर देखना चाहिए कि ये सारा कुछ जो आज उम्मत मुस्लिमा कर रही है, क्या कहीं कुरान और हदीस से इसकी कोई दलील मिलती है, उन बुजुर्गों की जिंदगी से भी नहीं मिलती, तो कुजा ये कि लोग जो है फिर इसको फैलाते हैं। तो ये है वक़्त अदल्लु कसीरा कि हम सब अपना अपना अपने खानदान का अपने घर वालों का जायजा लें, लेकिन मोहब्बत से समझाएं, प्यार से समझाएं। वला तज़िदिस ज़ालिमीन इल्ला दलाला, इलाही तो इन जालिमों को जो है इजाफा कर, किस चीज में इजाफा कर, और तू ना इजाफा करना मगर गुमराही में। तो मानी क्या है कि इलाही इन जालिमों की गुमराही में जो है वो इजाफा कर, बस अब इन जालिमों की गुमराही के सिवा किसी चीज में तरक्की न देना। अब ये मत समझे कि आपने ये दुआ बेसब्री की वजह से की थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो दुआ की थी ना, क्या थी वो, असल में बददुआ थी कि परवरदिगार इनके माल गारत कर दे, इनके दिलों पर ऐसी मोहर कर दे कि ईमान न लाएं जब तक के दर्दनाक अजाब न देख लें, और अल्लाह ताला ने उनके जवाब में कहा था तुम्हारी दुआ कबूल की गई, सूरत यूनुस आयत 88-89। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये बददुआ उस वक्त की है जब अल्लाह ही ने चाहा, यानी منشاہ الہی کے مطابق تھی. سورت ہود میں آتا ہے وَأُوحِيَا إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ, اے نوح, نوح کی طرف وحی کی گئی, نوح علیہ السلام کی طرف, کہ بے شک اب ان تیری قوم میں سے ہرگز کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ تو ایمان لا چکے, اب اس کے سوا اب اور کوئی ایمان لانے والا باقی نہیں ہے, اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے. سورت ہود آیت 36. پھر انہوں نے اس کے بعد یہ دعا کی ہے, اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ دعا جو ہے جب وہ کرتے ہیں پھر اللہ ان کی دعا کو کیسے قبول کرتے ہیں, مما خطیئاتہم, ان کی خطاؤں کی وجہ سے. تو خطا کہتے ہیں جان بوجھ کر گناہ کرنا, تو ان کی خطاؤں کی وجہ سے اغرقو, وہ غرق کر دیے گئے. فادخلوا نارا, پس داخل کیے گئے آگ میں, فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا, پس نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. تو اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نمبر ایک کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر, حضرت نوح علیہ السلام نے جتنے سال دعوت دی قرآن میں ان کی مدت بتائی گئی ہے 50 کم 1000 سال دعوت دی, تو اتنی لمبی دعوت دینے کے بعد بھی جب لوگوں نے دین کو قبول نہ کیا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ بد دعا کی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ اب ان میں ایمان لانے والا کوئی نہیں بچا, تو انہوں نے پھر بد دعا کی. اچھا, آج ہم میں سے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اب بد دعا کرنی شروع کر دیں, کیونکہ ہم نہیں جانتے غیب کا علم, ہمارا کام کیا ہے کہ بس دعوت دیتے چلے جانا. تو نوح علیہ السلام نے غصے میں آ کر بد دعا نہیں کی, لیکن اللہ کے اذن کے مطابق, اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ دعا کی. اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کی دعا قبول کر لی گئی, اور ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیا کیا گیا کہ ان کو غرق کر دیا گیا. فَأُدْخِلُوا نَارًا, اور ان کو جو ہے وہ آگ کے اندر داخل کر دیا گیا. تو یہاں پہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ غرق کر دیے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں غرق کیے گئے, اصل میں وہ اپنے گناہوں کے اندر ڈبو دیے گئے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے گناہوں ہی میں غرق کر دیے گئے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی گناہوں کی دلدل میں اس طرح پھنس جائے, اس طرح ڈوب جائے, پھر اس کو کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہے. تو مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے فوراً قبول کر لی گئی, فوراً قبول کر لی, اور یہ لوگ اپنے جرائم کے سبب جو ہیں وہ غرق کر لیے گئے. کس میں؟ یعنی گناہوں ہی میں ڈبو دیے گئے. اچھا, دوسرے اس کے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے جب وہ فوت ہو گئے تو ہوا کیا کہ وہ غرق کس میں کیے گئے؟ طوفان میں, پانی میں. کیسا طوفان تھا؟ آسمان سے بھی پانی اور زمین سے بھی پانی. کہ وفارت تنور, پانی کے چشمے ابل پڑے تھے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دنیا ہی میں پانی کے عذاب میں جو ہے وہ غرق کر دیا. اچھا, دوسری طرف مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ قبر کے عذاب پر دلالت کرتی ہے, قبر کے عذاب پر دلالت کرتی ہے. کیسے؟ کہ دنیا میں تو پانی کے عذاب میں غرق کر دیے گئے اور ساتھ ہی آگ میں داخل کر دیے گئے. کیسے؟ کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ کیا کیا کہ جہنم ان کے لیے جو ہے وہ ایک گڑھا بنا دی, قبر ان کے لیے گڑھا بنا دی. اور پھر آخرت میں جو ان کو عذاب دیا جائے گا تو آگ کا عذاب دیا جائے گا. دنیا میں پانی میں ڈوبے اور آخرت میں جو ہے وہ آگ میں ڈوبیں گے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے پیغمبر کو اتنا ستایا کہ اللہ نے پھر اتنی زیادہ سخت ان کو جو ہے وہ سزا دی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ यहाँ पर ये बात भी पता चलती है, फलम यजदु लहुम मिन दुनिल्लाहि अंसारा, कि बस ना पाया उन्होंने अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार। कैसी हकीकत है कि ना वद, ना सुआ, ना यहूस, यूक, नस्र और वो बहुत से बुत जिनको पूजा करते थे, जिनके बारे में उनके बुजुर्गों ने कहा था, सरदारों ने, ला तजरुन आलिहतकुम, फिर कोई उनकी मदद को ना आया। जब दुनिया में वो पानी में डुबो दिए गए और फिर वो आग में दाखिल कर दिए गए और आखरत में जो उनको सजा मिलेगी, तो कोई भी उनकी उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में अपना मददगार न पाया। और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने और क्या कहा, फकाला नूहु रब्बे ला तजर अलल अर्दी मिनल काफिरीन दयारा, उन्होंने कहा ए मेरे रब ला तजर, तू ना छोड़, ऐसे है ना किसी को हकीर समझ कर छोड़ देना, तो ना छोड़ अलल अर्दी जमीन पर, मिनल काफिरीन किसी काफिर को, दयारा बसने वाला। दयार किसे कहते हैं? हाँ, जैसे दार घर के लिए आते हैं ना, तो शहर बस्ती रहना उसके लिए आता है, रहने सहने के लिए दयार आता है। तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे पालने वाले, तू काफिरों में से जमीन पर कोई एक भी ना छोड़ना। इससे क्या बात पता चलती है कि मुफस्सरीन ये कहते हैं कि दयार फ़ाल के वजन पर है, फा या ऐन अलिफ लाम, जैसे दीवार नहीं लिखते दीवार, दाल पर जबर दे देवार, तो इस तरह फ़ाल के वजन पर है। वो कहते हैं कि वाव को या से बदल कर मुदगम कर दिया गया, तो जब वाव को या से बदल दिया गया तो फिर क्या बन गया, दयार। तो मानी ये है कि किसी को भी जो है वो रहता बसता न छोड़, किसी को भी जो है वो दुनिया की जो जिंदगी है इसमें जो है फायदा हासिल करने वाला ना छोड़, कोई भी जमीन पर बसे नहीं। फिर इसके बाद दुआ मिलती है जो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने और मोमिन जो लोग हैं उनके हक में की है। तो लेकिन जो है जो आयत नंबर 26 में वो ये कह रहे हैं कि कोई काफिर ना छोड़ना, उसका मजीद हिस्सा क्या है, इन्ना का इंतजर हूं, कि अगर आपने इनको छोड़ दिया, यो दिल इबादा का, तो ये गुमराह करेंगे तेरे बंदों को, वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, और क्या होगा कि जो है वो नहीं पैदा होंगे, वला यलिदु, तो यलिदु का रूट क्या है, वलादा, और नहीं जनेंगे ये, इल्ला फाजिरन मगर बदकार, कफारा न शुक्रे। तो असल में फजर किसे कहते हैं, जो रात की तारीकी के पर्दे को फाड़ कर जब सुबह की रोशनी निकलती है तो फजर होती है ना, और कितने बड़े पैमाने पर होती है। फाजिर होता है दीन का पर्दा फाड़ने वाला, दीन के अहकामात को फाड़ कर निकलने वाला, अलानिया गुनाह करने वाला, ये इस्म फाइल का सीगा है, इल्ला फाजिरन कफारा, और कफारा होता है नशुकरा। तो और ये नहीं पैदा करेंगे मगर बदकार और नाशुक्रे। रब इग़फिरली, ऐ मेरे रब बख्श दे मुझको, वले वालिदैया, और मेरे माँ बाप को। अब वो दुआ कर रहे हैं मोमिनीन के हक में बख्शिश की, वले मन दखला बैतिया, और उसे भी जिसे तू दाखिल कर दे मेरे घर में, मोमिनन ईमान लाकर, वलिल मोमिनीना, और तमाम मोमिनों को, वल मोमिनात, और मोमिन औरतों को भी। अब आप देखेंगे औरतों का जिक्र अलग से आया है, लेकिन खूबी क्या है, ईमान लाना, वला तज़िद ज़ालिमीन इल्ला तबारा, और तू ना बढ़ा जालिमों के लिए तबार, तबारा, तबार जो है ये हिलाकत और बर्बादी के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है, तो इसका रूट क्या है, शाबाश आपने इसका रूट बिल्कुल ठीक बताया है, इसका रूट है बावरा, और जो है वो हिलाक होने के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हिलाक होने के लिए कुरान में 13 लफ्ज आए हैं और 12 जिसका रूट बावरा है, और यहाँ पे जो है तबारा है। इसके मानी क्या होते हैं, इसके मानी होते हैं किसी माल का बहुत ज्यादा मंदा पड़ना, हिलाकत के करीब होना। और मैंने आपको तारीफ याद करवाई थी कि कसादा हत्ता फसादा, आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ चलते जाना, और जैसे होता है ना बर्फ, बर्फ बेचने वाला बर्फ बेचता ताकि नफा मिले, तो नफा मिलना तो दूर की बात, जो असल है ना उससे भी महरूम हो जाए। तो क्या कहा जा रहा है कि तहस नहस कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया उनको, जो है वो गारत कर दिया, बिल्कुल उनको जो है वो खत्म करके रख दिया, इल्ला तबारा। अच्छा, अब ये नूह अलैहिस्सलाम का जो पूरा वाकया पढ़ा है और आखिर में मोमिनीन के लिए दुआ भी पढ़ी आपने। अच्छा, इस पूरे वाक्य से अमल के लिए हमारे सामने उसूल क्या आते हैं नूह अलैहिस्सलाम की कहानी से? तो अमल के उसूल हमें अपने सामने रखने चाहिए जो मेरे और आपके लिए बहुत अहम है। तो पहली बात जो याद रखने की है कि अबाओ अजदाद की अंधी तकलीद का खौफनाक अंजाम हुआ करता है। तो इनकी कौम ने अपने अबाओ अजदाद की तकलीद की, और कैसी? अंधी तकलीद की, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात जो हमारे सामने आती है वो क्या है कि इनकी जो कौम थी वो कैसी कौम थी कि इतना नहीं कि सिर्फ उन्होंने जो है वो अपने अबाओ अजदाद की अंधी तकलीद की है, बल्कि उन्होंने जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की दावत को झुठलाया है। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने कितने अरसा दावत दी? 950 साल। अच्छा, फिर उनकी दावत के क्या मरहले थे कि उन्होंने एक मुद्दत तक खुफिया दावत दी है, खामोशी से, قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا, फिर दूसरी मुद्दत कैसी है कि अलानिया दावत दी है, ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا, तो उन्होंने अलानिया दावत भी दी है। फिर हमें एक बात क्या पता चलती है कि उनकी कौम ने जो है वो नरमी और जो है वो शीरी कलामी की बजाय क्या किया कि जो है वो बड़ा सख्त जवाब दिया, और आप के लिए क्या किया, आपने अभी पीछे ही पढ़ा कि उन्होंने ऐसी चालें चली जो बहुत बड़ी चालें थी। कुरान ने क्या कहा, मकरू मकरन कुबारा, तो कौम का ये था जवाब। अच्छा, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अंदर क्या है कि मुसलसल उनके अंदर एक नरमी और मोहब्बत का एक उबलता हुआ चश्मा है। फिर हमें जो है वो चौथी बात क्या पता चलती है कि आपने राय हक में आने वाली मुश्किलात और उनके मजाक जो है ना उसकी कोई परवाह नहीं की, दिन रात अपने थोड़े से साथियों के साथ अपना मिशन जारी रखा है। तो इससे अमल का क्या असूल निकलता है कि बेशक अकेले हों, थोड़े लोग साथ हों, मुश्किलात की कसरत हो, मुखालफीन का मजाक हो, लेकिन मिशन जो है ना उसको छोड़ते नहीं है। फिर पांचवी चीज ये सामने आई के लोगों को दावा देते वक्त जो है वो एक तरफ जो है इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, उनके अंदर एक उम्मीद और रोशनी की किरण पैदा करना, दूसरी तरफ अल्लाह की नेमतों और एहसानात की याद दहानी। और नूह अलैहिस्सलाम ने जो है बेशुमार नेमतों का जिक्र किया है, जिस्म, जमीन, आसमान, ताकि लोग जो है वो शिर्क करना छोड़ दें। और इसके साथ साथ अस्तगफार के फवायद भी आपने बताए, यानी बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं। अच्छा, इसके बाद फिर छठी बात हमें यह पता चलती है जो बहुत सी सूरतों में आपने पहले पढ़ी और सूरत हूद में, कि हक के रास्ते में बीवी और बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है। क्योंकि आपकी कुल बात का निचोड़ क्या है, आपके कुल पैगाम का निचोड़ क्या है कि अनथक मेहनत की है, बेमिसाल दावत दी है, इसके बावजूद बीवी और बेटा ईमान नहीं लाया। अच्छा, आजकल के दौर में भी और पहले जमाने में भी कुछ लोग बहुत नेक गुजरे, और आजकल बहुत बाज लोग नेक हैं, लेकिन घर में बेटा नेक नहीं है, बेटी नेक नहीं है, बुराई के रास्ते में है। अब लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं लो जी खुद तो वो बहुत दर्द देती है, बेटे को नहीं देखा, या मियां को कहेंगे कि बीवी को नहीं देखा, या बीवी को कहेंगे शौहर को नहीं देखा, वो तो शराबी कबाबी। तो लोग शौहर को बीवी का, बीवी को शौहर का, वालदेन को औलाद का, औलाद को वालदेन का, बाज औलाद बहुत नेक होती है, वालदेन अच्छे नहीं होते तो लोग ताने देते हैं। तो वालदेन औलाद को पूरी तरह समझाने के साथ और मुसलसल वो समझाते रहे, फिर भी अगर औलाद बुराई पर आए, तो उनके अमलों को दलील बनाकर नेकी का काम करना ना छोड़ दें, ना शोहर छोड़े, ना बीवी छोड़े, ना वालदैन छोड़े और ना ही औलाद छोड़े। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम मिसाल है। मैं तो इस बात पे सोचती हूँ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अनथक मेहनत, बेमिसाल दावत और इसार, आपके दावे पर बीवी और बेटा ईमान ना लाए कि जिगर फट जाते होंगे और आंखों से आंसू बहते होंगे। कैसी कौम पत्थर दिल और पहाड़ों जैसे दिल रखने वाली सख्त दिल थी, और बिलाखिर आपकी आंखों के सामने बीवी और बेटा भी जो है वो डूब गया। कितनी बेटे से मोहब्बत ही कहते हैं कि आ मेरे साथ कश्ती में सवार हो जा, और बेटा कैसा सख्त दिल था, कहने लगा कि नहीं, ये ऊंचा सा पहाड़ जो है ना, इस पर मैं पनाह ले लूंगा। बजाय इसके कि वो ईमान ले आता, तो ईमान लाने की बजाय उसने जो है वो आगे से बात की है और बाप को झुटलाया है, और उसके साथ ही जो है ये बात कही है कि मैं ये जो पहाड़ है ना, इसमें चढ़ूंगा और जाके ऊपर पनाह ले लूंगा। आप उस बेटे की जुर्रत तो देखें, आप उस बेटे का इनकार तो देखें, आप उस बेटे का जो है वो पहाड़ पहाड़ की चोटी का भरोसा तो देखें। और लेकिन फिर हुआ क्या कि फिर उसको डबो दिया गया। अब आप देखें कि आपने ये दुख कितने सब्र से बर्दाश्त किया है, कितने हौसले से। तो कयामत तक जो लोग दावा का काम करते रहेंगे, नूह अलैहिस्सलाम का ये किरदार उनके लिए जो है वो एक मिशल है, एक पहाड़ी का चिराग है कि इस रास्ते की हर रुकावट को, हत्ता के औलाद हो, वालदैन हो, शौहर है या बीवी है, कोई भी है, उसको अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देना। अच्छा, फिर इसके साथ जो है आप देखें कि हमें फिर एक और बात जो पता चलती है वो क्या है कि हमें इल्मी हकायक भी हमारे सामने आते हैं, जिसको साइंस आज हमारे सामने रखती है, जैसे सूरज को दहकता हुआ रोशन चिराग, और सिराज ऐसे चिराग को कहते हैं कि जो खुद जले और उसे एक शोला निकलने लगे, और ऐसे चिराग की रोशनी जाती होती है, वो उधार नहीं लेता किसी से। तो अब जदीद साइंस ने ये साबित किया है कि सूरज जो है शोला जन गैसों का मजमुआ है, और इसकी रोशनी और ताकत का असल सरचश्मा इसकी सतह के अंदर होने वाले एटमी धमाके हैं। तो साइंस क्या साबित कर रही है कि सूरज के अंदर ही पावर भी है और रोशनी भी है, दाखली तौर पर जितनी इसकी रोशनी है ना, अंदर के दाखली धमाकों की वजह से है। तो सिराज इतने देर पहले उन्होंने कहा और आज साइंस उसको साबित कर रही है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने चांद को नूर कहा, जो नूह अलैहिस्सलाम ने दलील दी थी, और नूर कहते हैं कि गैर रोशन ढेर, जो रोशनी दूसरों से हासिल करके मुनव्वर हो, उधार से रोशनी दूसरों से लेना। चांद खुद रोशन नहीं है, बल्कि ये सूरज से रोशनी हासिल करता है। ये कौन बता रही है आज? साइंस बता रही है, कुरान ने इतनी देर पहले कह दी। फिर इसके साथ जो है एक और बात हमें पता चलती है, और ये बात नंबर 8 है कि तबकाती कशमकश, ये जो स्टेटस बैरियर है और ये जो तबकाती कशमकश है, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में पाई जाती थी। एक तबका था अमीरों का, रईसों का, गनी और मुतरफीन का, दूसरा तबका था गरीब मिस्कीनों का और मेहनत मशक्कत करने वालों का। और जो अमीर लोग थे वो गरीबों को हकीर समझते थे, और अपनी दौलत को जो है वो क्या समझते थे, अपनी शान और शौकत और आला मकाम और मर्तबे का राज। गरीब लोग ये बात समझ चुके थे कि शान और शौकत का मकाम जो है वो क्या है, ईमान कबूल करना। तो उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। अब कौम के रईस कहने लगे कि आप पर जो है चंद अराजिल जो है वो ईमान ले आए हैं। फिर इसके साथ 9वीं बात हमें ये पता चलती है कि ईमान के बगैर रिश्तेदारी भी कोई फायदा मंद नहीं है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है वो 10वीं बात ये पता चलती है कि हक और बातिल की कश्मकश जो है वो हर दौर में जारी रही, जैसे एक जंग नहीं होती, हर दौर में रही। लेकिन दाई का काम है हौसले, सब्र और इस्तकामत से जो है वो काम करते चले जाना। तो आज के इस दौर में जो लोग मिशन रखते हैं अपना दावा, तो उनका काम क्या है कि अजम और हौसले से करें। फिर 11वीं बात ये है कि वक्त की कदर करें। तो कदरों कीमत जो है वो किस चीज की है, وقت کی قدر کرنا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو تو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی تھی, تو ہماری تو عمر ہی بہت تھوڑی ہے. تو جتنا بھی تھوڑا سا وقت ہے, جتنی ہماری عمر ہے, جب شعور مل گیا ہے تو کیا کریں کہ پوری کوشش جو ہے وہ کریں. اچھا پھر ایک بات اور یاد رکھیں اسی میں گیارہویں میں, کہ قدر و قیمت جو ہے وہ کثرت پر نہیں ہے, عزم اور ہمت پر ہے. ایک طرف تو 950 سال دعوت دی, دوسری طرف جو اصل بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے کردار میں ایک عزم اور ہمت پائی جاتی ہے. اور امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا, مجھ پر پہلی امتیں پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ 10 سے کم پیروکار ہیں, کسی کے ساتھ 1-2 ایمان لانے والے ہیں, اور کسی کے ساتھ 1 بھی مومن نہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک پیغمبر کے ساتھ کوئی 1 بھی ایمان نہیں لایا, تو اگر کلاس میں زیادہ لوگ فرض کیا نہیں بھی آتے تو پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت تو دینی چاہیے نا. پھر اسی طرح جو ہے ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اگر کافر جو ہیں وہ تنگ کریں اور ان کے شر کا غلبہ ہو, تو نوح علیہ السلام نے جیسے کافروں کے لیے بد دعا کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں دعائے قنوت نازلہ جو ہے وہ ملتی ہے. تو قنوت نازلہ کب پڑھی آپ نے؟ جب قبیلہ مضر اور عقل کے لوگوں نے جو ہے وہ جو حافظ تھے ان کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا نا, شہید کر دیا تھا. تو آپ نے قریش کے سرداروں ربیعہ, شیبہ, عتبہ وغیرہ کے لیے بھی بد دعا کی جب ان کی اذیتیں حد سے بڑھ گئیں. تو آج کے دور میں جو مسلمانوں کے لیے مشکلات کا دور ہے, دعائے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح جو ہے ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ بری صحبت کا انجام بھی برا ہوتا ہے. تو جو قوم کے لوگ جو تھے وہ کیا تھا کہ وہ سرداروں کی صحبت میں تھے نا, تو اس لیے وہ سرداروں کا کہنا مانتے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا, پرورش پانے کے باوجود آپ پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ اس لیے کہ وہ کافر جو قوم تھی اس کے عقائد اور اعمال سے متاثر تھا, تو بری صحبت کے اس پر اثرات تھے, تو بری صحبت کا پھر انجام برا ہوا کرتا ہے. اور پھر اس سے ایک بات اور ہمیں اہم پتہ چلتی ہے کہ بت بے حقیقت ہیں, بت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے نا. اچھا اسی طرح بس ایک آخری بات کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم جیسے طوفان سے تباہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو محفوظ رکھا. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ 1920 میں سر لیونارڈ کی سربراہی میں ایک ٹیم نے عراق میں اثار قدیمہ کی تحقیق کے لیے کھدائی کی. یہ ٹیم کن لوگوں پر مشتمل تھی؟ یہ برطانیہ اور امریکہ کے محقق کہتے ہیں نا, تحقیق کرنے والے, ریسرچ کرنے والے. تو یہ ٹیم برطانیہ کے میوزیم اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے جو تھے محققین ان پر مشتمل تھی. اس ٹیم نے اور کے شمال میں واقع شہر تل عبید میں کھدائی کی, تو انہیں کافی گہرائی میں جو ہے دفن کی ہوئی چکنی مٹی کے برتن, موتیاں اور دیگر آلات ملے جو عہد قدیم میں مستعمل تھے. لیبورٹری ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ اس مدفون ذخیرے کے اجزاء دریائے فرات کے وسطی علاقے سے پانی کے ساتھ بہہ کر اس جگہ منتقل ہوئے ہیں. اور یہ بھی پتا چلا کہ اس علاقے میں بہت پہلے کوئی زبردست طوفان آیا تھا, اور جس پانی نے یہ چیزیں یہاں دفن کر دی, وہ کہتے ہیں کہ اس کی اونچائی کم از کم 25 فٹ تھی, اور تورات میں اس طوفان کی اونچائی 26 فٹ بیان کی گئی ہے. تو بہرحال اسلام اور قرآن کی جو باتیں ہیں اس کے لیے کسی سائنس کی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات تو کیا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ نیک بن جائیں. تو قوم نوح کا کردار دیکھیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنا رویہ دیکھیں, نوح علیہ السلام کا کردار دیکھیں اور اپنا دایانہ کردار دیکھیں. تو اب اس کے ساتھ نا آپ لوگ ذرا سوچیں اس بات پر کہ یہ پوری سورت جو ہے یہ دائی کا کردار بتاتی ہے نا, دعوت اللہ اور اس کے طریقے. تو اب جو ہے آپ موجودہ دور میں دعویٰ کیسے کریں گی؟ تو آپ جو ہیں آپ کا ہوم ورک ہے کہ 3 ایسے طریقے سوچیں जो आज के दौर में सबसे ज्यादा मुअस्सर हैं, आज के दौर में सबसे ज्यादा तीन मुअस्सर तरीके कौन से हो सकते हैं, और क्या आज का मुसलमान उन तरीकों को इख्तियार कर रहा है, क्या मैं इख्तियार करती हूँ, क्या आप इख्तियार करते हैं, फिर आप वो तरीके बताएं ताकि हम उन हम उनको शेयर करेंगे, ताकि फिर हम उन तरीकों के मुताबिक जो है वो दावा की जो एक्टिविटीज हैं उनको हम आगे लेके चलें। आप जो ये क्रिश्चियन जो हैं, ये मिशनरीज, इनको देखें ये कैसा करते हैं, आम पब्लिक और कैसे करती है, तो मैं और आप कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु इलैका।